नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार घोषित। ओहायो के सेनेटर जेडी वेंस उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से मॉरिशस की दो दिन की यात्रा पर। सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने के अपने 3 जनवरी के निर्णय के विरुद्ध दायर समीक्षा याचिका खारिज की। देश के पश्चिमी तट और गुजरात में तेज बारिश का अनुमान। अफगानिस्तान के नंगरहार में अचानक आई बाढ़ से 35 लोगों की मृत्यु, 250 लोग घायल। और स्वीडिश ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स में भारत के सुमित नागल और स्वीडन के एलियास यमेर के बीच मुकाबला आज। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में आधिकारिक तौर पर नामांकित किया गया है। कल रात रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के प्रतिनिधियों से बहुमत हासिल करने के बाद उनका नामांकन आधिकारिक हो गया। वर्ष 2016 में जीतने और 2020 में राष्ट्रपति जो बाइडेन से हारने के बाद ये श्री ट्रंप का लगातार तीसरा नामांकन है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव इस वर्ष नवंबर में होने जा रहा है। श्री डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ओहायो के सेनेटर जेडी वेंस उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। वे एक पूर्व वेंचर कैपिटलिस्ट और आत्मकथा हिलबिली एलेजी के लेखक हैं। सेनेटर वेंस को चुनकर श्री ट्रंप ने यह दिखा दिया है कि वे अगले चुनाव में पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से मॉरिशस की दो दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। वे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री मॉरिशस के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों पर व्यापक चर्चा होगी। इस यात्रा से भारत और मॉरिशस के बीच संबंध प्रगाढ़ होंगे और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति, सागर दृष्टिकोण और ग्लोबल साउथ के विचारों के महत्व को बल मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने के अपने पिछले निर्णय के विरुद्ध दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। समीक्षा याचिका पर विचार करने के बाद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। अपने पिछले आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP और हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे तीसरे पक्ष के संगठनों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है। अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों में भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड सेबी से जांच स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। इसमें राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक से संबंधित राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया। हालांकि पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कहा कि हवाई यात्रा को सुलभ और सस्ता बनाना सरकार की प्राथमिकता है। श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई यात्रियों को दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान कराने के लिए प्रयासरत है। नई दिल्ली में कल दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में श्री नायडू ने देश में नागरिक उड्डयन के मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों को रेखांकित किया। उन्होंने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और विमानन क्षेत्र के लिए हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश पर जोर दिया। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नागालैंड की जलमार्ग क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कल नागालैंड के चोमो केदिमा में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा आयोजित सम्मेलन में ये घोषणाएं की। श्री सोनोवाल ने तिजो जुंकी राष्ट्रीय जलमार्ग 101 को भी विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने सामुदायिक घाटों के साथ साथ रो पैक्स घाटों की व्यावहारिकता का अध्ययन करने के साथ डोयांग नदी झील की विशाल पर्यटन क्षमता को विकसित करने के लिए पहल करने की भी बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत का वस्तु और सेवा निर्यात जून महीने में 5.4% बढ़कर 65.47 अरब अमरीकी डॉलर हो गया है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अनुसार अप्रैल जून तिमाही में समग्र निर्यात वृद्धि 8.6% बढ़कर 200.33 अरब डॉलर हो गई। व्यापारिक निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 2.55% की वृद्धि दर्ज की गई। इस वर्ष जून माह में व्यापारिक निर्यात वृद्धि के प्रमुख चालकों में अभियांत्रिक वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाएं, कॉफी और कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन शामिल हैं। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि देश ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI की मदद से 9 वर्षों में जो उपलब्धि हासिल की है उसे DPI के बिना हासिल करने में 50 वर्ष लग जाते। श्री अमिताभ कांत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के G20 कार्यबल की अंतिम रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत डिजिटलीकरण के मामले में बहुत आगे है और रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI का इस्तेमाल होने से देश में वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन होता है। भारत में खरीफ फसल की बुआई 575 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान लगभग 50 लाख हेक्टेयर की तुलना में 62 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में दालों की खेती हुई है। तिलहन की खेती 140 लाख हेक्टेयर में की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 115 लाख हेक्टेयर अधिक है। धान की बुआई का क्षेत्रफल बढ़कर 115 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है, जो पिछले वर्ष की अवधि में 95 लाख हेक्टेयर से अधिक था। तेलंगाना सरकार ने फसल ऋण माफी के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देशों को सूचीबद्ध करने वाला एक सरकारी आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार प्रत्येक किसान परिवार के लिए 2 लाख रुपए तक की छूट की सीमा तय होगी और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा कार्ड को किसान परिवार के रूप में नामित करने के लिए आधार के रूप में मान्यता दी जाएगी। एक रिपोर्ट।
ये छूट 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, ग्रामीण बैंकों और जिला सहकारी बैंकों से प्राप्त अल्पावधि फसल ऋणों पर लागू होगी। ऋण माफी कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को अतिरिक्त ऋण राशि बैंकों को चुकानी होगी और शेष 2 लाख रुपए किसान के ऋण खाते में जमा किए जाएंगे। राज्य सरकार कृषि ऋण माफी के लिए एक विशेष पोर्टल संचालित करेगी और प्रत्येक किसान के ऋण खाते, डेटा सत्यापन, पात्रता और अन्य सहित सभी विवरण पोर्टल में उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत कक्ष भी स्थापित किया जाएगा। हैदराबाद से MS लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
अमरनाथ गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए 4,132 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। इनमें से 1,808 तीर्थयात्रियों ने सुबह बालतल आधार शिविर से और 2,324 तीर्थयात्री पहलगाम से रवाना हुए। मौसम विभाग ने आज देश के पश्चिमी तटीय भागों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जनामणि ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में मॉनसून की सक्रियता बढ़ गई है।
महाराष्ट्र कोस्ट यानी कोकण एंड गोवा और उसी के साथ साथ कोस्टल कर्नाटक और साउथ इंटीरियर कर्नाटक, इसी में लाल कलर का वार्निंग हम लोग दिया है और एक लो प्रेशर एरिया जो है वो फॉर्म हो चुका है ओवर उड़ीसा कोस्ट और इसके वजह से जो मानसून काफी एक्टिव है, जो गुजरात रीजन है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक एंड केरल है, बहुत ज्यादा बारिश होगा और फ्लैश फ्लड भी हो सकता है। मुंबई भी हैवी रेनफॉल वार्निंग दिए है और अगर सेंट्रल इंडिया का बात करें तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इस जगह में छत्तीसगढ़ में हैवी रेनफॉल।
दक्षिणी गुजरात के विभिन्न हिस्सों में पिछले 2 दिन से तेज वर्षा हो रही है। सूरत, भरूच और नर्मदा जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा हुई है। सूरत जिले के उमरपाड़ा में कल सिर्फ 6 घंटों में 13 इंच से ज्यादा वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज 8 जिलों में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
गुजरात में कल व्यापक वर्षा दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में 200 से अधिक तहसीलों में हल्की से भारी बारिश दर्ज हुई। बारिश के चलते राज्य के प्रमुख बांध और नदियों में जल स्तर बढ़ गया है। भारी वर्षा के कारण सूरत, भरूच और नर्मदा जिलों में सामान्य जनजीवन असरग्रस्त हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में आज रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार दक्षिण गुजरात में छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत और नवसारी, जबकि सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गीर सोमनाथ और दीव जैसे तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा का अनुमान है। राज्य में अब तक 30% बारिश दर्ज हुई है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
महाराष्ट्र के रायगढ़ के विन्हेरे और रत्नागिरी के दीवान घावते स्टेशनों के बीच एक सुरंग के बाहर भूस्खलन के बाद रेल यातायात निलंबित कर दिया गया है। मलबा हटाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
IMD ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट एवं पालघर, रत्नागिरी, ठाणे, मुंबई, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, कोल्हापुर, परभणी, हिंगोली, अमरावती और वर्धा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद बल ने कुर्ला, घाटकोपर, वसई, ठाणे, महाड, खेड, चिपलूण, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, सांगली में एक एक टीम, अंधेरी में 3 टीमें और नागपुर में 1 टीम तैनात की है। स्थानीय प्रशासन हर स्तर पर संभावित खतरों से बचने के लिए सतर्क और तैयार है। भावना गोखले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में तेज बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में कम 35 लोगों की मृत्यु हो गई और 250 लोग घायल हो गए। इस आपदा के कारण पाकिस्तान के सीमावर्ती प्रांत के आसपास के क्षेत्र और जलालाबाद की प्रांतीय राजधानी सुखरोड जिला प्रभावित हुआ है। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। नंगरहार के पास स्थित कुनार प्रांत में इसी तरह की प्राकृतिक आपदा में 5 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वीडिश ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के 32वें राउंड के मुकाबले में आज भारत के सुमित नागल का सामना स्वीडन के एलियास यमीर से होगा। पुरुष डबल्स में आज शाम सुमित नागल और पोलैंड के करोल डेजवस्की की जोड़ी का मुकाबला फ्रांस के अलेक्जेंडर मुलर और लुका वान एश से होगा। सुमित नागल ने सीजन में 2 चैलेंजर खिताब जीते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonyaya.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
धन्यवाद कनक। भोजशाला परिसर मामले में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपे जाने और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से संबंधित खबरें आज अनेक अखबारों की सुर्खियां हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की 2000 पन्नों की रिपोर्ट के हवाले से अमर उजाला लिखता है, वाघ देवी की खंडित प्रतिमा और कई शिलालेख मिलने का दावा। जनसत्ता लिखता है, भोजशाला में ब्रह्मा, गणेश और नरसिंह की मूर्तियां। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मंदिरों के अवशेष से बना भोजशाला परिसर। पंजाब केसरी ने लिखा है, अगली सुनवाई 22 जुलाई को। नवभारत टाइम्स की खबर है, जानलेवा हमले में ट्रंप ने कान का एक हिस्सा खोया। पहले इंटरव्यू में कहा, मौत तो तय थी। अमर उजाला ने इस हमले के बाद ट्रंप के पक्ष में बड़ी सहानुभूति पर लिखा है, सर्वे करने वाली एजेंसियों का दावा, आज हो चुनाव तो भारी बहुमत से ट्रंप बनेंगे राष्ट्रपति। सीबीआई की प्राथमिकी को चुनौती देने वाली कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की याचिका खारिज होने की खबर वीर अर्जुन, अमर उजाला, जनसत्ता और राष्ट्रीय सहारा के पहले पन्ने पर है। एम्स में जल्द ही कराई जाएगी चेहरा प्रत्यारोपण की सुविधा, दैनिक जागरण के बॉटम स्प्रेड पर है। राष्ट्रीय थिंक टैंक NAPI द्वारा खिलाड़ियों और फिल्म स्टार को पत्र लिखकर मानक से अधिक मात्रा वाले नमक, चीनी और वसा के खाद्य उत्पादों का विज्ञापन न करने की अपील राजस्थान पत्रिका में है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार घोषित। ओहायो के सेनेटर जेडी वेंस उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर। सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए किसी भी विशेष जांच दल गठित करने से इनकार करने वाले अपने 3 जनवरी के निर्णय के विरुद्ध दायर समीक्षा याचिका खारिज की। और देश के पश्चिमी तट तथा गुजरात में तेज बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।